हरे कृष्णा। हम जब यहाँ आए थे पहले उज्जैन में, हर रविवार को हम हमारे संडे फीस्ट या रवि वासरीय प्रीति भोज का आयोजन कर रहा था। जब हम कम्युनिटी सेंटर में था महानंदा में, उस समय आप में से कौन कौन आते थे यहाँ? ओके, जब हम शुरू किया था उस प्रोग्राम, तो संडे फीस्ट रविवार को जो उत्सव होता, तो उसमें लगभग 500 आदमी शुरू में आते थे, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लगभग 1300 आदमी आने लगा। बहुत अच्छा होता था उस समय, याद है ना आप सबको, जो आप जाते थे उस समय? रविवार को संडे फीस्ट होता था, वो कम्युनिटी हॉल के छत पर होता था, लेक्चर होता था हॉल में, गौरव के याद है? हाँ है। ओके, तब तुम्हारा उम्र कितना था? लगभग 5 साल का, 7 साल का। ओके, 5 और 7 में ज़्यादा अंतर नहीं है। उस समय हम, बल्कि वहाँ हर रविवार को प्रोग्राम होता था संडे फीस्ट का, बल्कि यहाँ आने के बाद धीरे धीरे संडे फीस्ट बंद हो गया था। एक कारण तो यह था कि संडे फीस्ट करने का जगह नहीं था ठीक रूप से, क्योंकि तब केवल मंदिर ही बना था और कुछ नहीं बना था। और ये भी हम देखा कि गर्मी के समय इतना गर्मी होता है कि कोई भी दोपहर को आना नहीं सकता है। तो वैसे धीरे धीरे हमारा संडे फीस्ट बंद हो गया था। तो इस बार वापस आने के बाद मैं गंगा नारायण को बोल रहा था, ठीक छोड़ दो नहीं लगेगा, गंगा नारायण को मैं बोल रहा था कि संडे फीस्ट शुरू होना चाहिए फिर से। गंगा नारायण ने बोला कि दोपहर को लोग नहीं आते हैं तो धूप के कारण, तो तब हम विचार किया कि संडे फीस्ट अगर हम शाम को रखते हैं 5:30 बजे रविवार को, तब शायद ठीक रहेगा। 5:30 से शुरू होगा कीर्तन, उसके बाद प्रवचन 7 बजे तक, 7:45 बजे तक, 5:30 से 7:45 बजे तक, उसके बाद आरती 7 बजे, और आरती के बाद फीस्ट। ये प्रोग्राम कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि संडे फीस्ट हो, क्योंकि इस्कॉन का हर मंदिर में संडे फीस्ट होता है। कहीं भी आप जाइएगा, रविवार को संडे फीस्ट होता है। केवल जो जगह मुसलमानों का ये है, वहाँ तो संडे का तो हॉलीडे नहीं होता है, वहाँ फ्राइडे का हॉलीडे होता है, शुक्रवार को होता है, तो वहाँ संडे फिर शुक्रवार को होता है। तो यहाँ हम सोचा कि ये इस समय होने से, गर्मी के समय भी, बारिश के समय भी, ठंडे के समय भी, हर समय हम 5:30 बजे कोई भी ऐसे आ सकते हैं, 5:30 से एकदम 7:30-8 8:30 तक प्रसाद लेके बस घर जाएंगे। संडे फीस्ट का मतलब क्या है? संडे फीस्ट प्रभुपाद जी ने शुरू किए थे अमेरिका में। आपको पता है कैसे संडे फीस्ट को शुरू हुआ था? प्रभुपाद कैसे कब अमेरिका गए थे ये आपको पता है सबको? किसको पता नहीं है? सबको पता, आपको पता नहीं है प्रभुपाद कौन है पता है? ओके, अच्छा, प्रभुपाद कहाँ से ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार शुरू किए थे पता है? कहाँ शुरू किए थे? पता नहीं है तुमको? पता है प्रभुपाद अमेरिका से शुरू किए थे, ये पता नहीं था तुमको? अच्छा, पता करना चाहिए। सबको पता है प्रभुपाद पहले कहाँ गए थे? प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। कैसे गए थे? बहुत सारे भक्तों को लेकर गए थे। जैसे यहाँ हम जब चलते हैं साथ में 20-25 लड़के लड़की चलते हैं, ऐसा है? प्रभुपाद अकेला गए थे। प्रभुपाद के बहुत सारे रुपए लेके गए थे। प्रभुपाद के हवाई जहाज से गए थे। प्रभुपाद कैसे गए थे? जहाज से, हाँ, समुन्दर के, हाँ, और वो भी कैसे? पैसेंजर जहाज नहीं, हाँ, जिस जहाज में माल जाता है उस जहाज में प्रभुपाद गए थे। अकेला गए थे और प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, केवल 3 ट्रंक में भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसको छपा के वो किताबें लेकर प्रभुपाद गए थे अमेरिका, जाके अकेला ये आंदोलन को शुरू किया। ये जो है इस्कॉन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस इस्कॉन का, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक कौन है? शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और प्रभुपाद कैसे प्रचार शुरू किए थे? मैं बताया, उनके पास पैसा नहीं था, वहाँ उनको कोई भी सुजोग और कोई भी आयोजन वहाँ नहीं था। प्रभुपाद अकेला ये शुरू किए थे। प्रभुपाद पहले अमेरिका में गए, जब गए कुछ दिन के लिए, प्रभुपाद ने पेंसिल्वेनिया में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है बटलर, छोटा सा शहर, उस शहर में प्रभुपाद ठहरे थे कुछ दिन के लिए। उसके बाद प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए थे और न्यूयॉर्क में एक जगह है जहाँ रईस आदमी लोग रहते हैं, उसको अपस्टेट, न्यूयॉर्क का अपर साइड कहा जाता है, अपर न्यूयॉर्क, जहाँ संपत्तिशाली रईस आदमी लोग रहते हैं। प्रभुपाद पहले उनके पास भक्ति के प्रचार, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का कोशिश किया, बल्कि उन लोगों ने, उनके पास उतना रिस्पांस नहीं मिला। तो प्रभुपाद धीरे धीरे अपर साइड से आते आते एकदम लोअर ईस्ट साइड में चले आए। लोअर ईस्ट साइड में जो वो एक जगह है जहाँ उतना वर्धिष्णु नहीं है, वो जगह उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है, और वहाँ पर गरीब आदमी रहते हैं। और उसके बाद है चाइना टाउन, जहाँ चीनी लोग रहते हैं। चीनी लोग, वो लोग एक जगह रहते हैं, उन्होंने जहाँ भी जाते हैं सब इकट्ठा रहते हैं। जहाँ भी आप जाएंगे उसको चाइना टाउन कहा जाता है। जैसे चाइना टाउन कलकत्ता में भी है, उज्जैन में है चाइना टाउन? नहीं है। चीनी लोग यहाँ नहीं है, नहीं तो यहाँ भी चाइना टाउन बन जाता था। सैन फ्रांसिस्को में भी वैसे है चाइना टाउन, जहाँ भी चाइनीज लोग रहते हैं वो चाइना टाउन होता है। तो ये चाइना टाउन के एकदम, चाइना टाउन एकदम नीचे है, उसके ऊपर है लोअर ईस्ट साइड का बाउरी। बाउरी भी एक जगह है, वैसा जगह है जहाँ कोई संस्कृतिवान आदमी साधारणतया नहीं रहते हैं। तो और उस समय वहाँ पे काफी युवा लोग रहते थे जो अमेरिका के समाज से विरोधी बन गए थे, जिसको आप शायद जानते हैं, जिसको हिप्पी कहा जाता है। हिप्पी लोग वहाँ रहते थे, क्योंकि उन लोग के रहने का उन लोग यद्यपि वो लोग बहुत सारे बड़े घराने के लड़के लड़कियाँ हैं, बल्कि वो लोग घर छोड़ के निकल गए हैं और उन लोगों ने समाज के विरोधी बन गए। मतलब उन लोगों ने बोला कि हमको रुपए का ज़रूरत नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए, हम गरीब आदमी के जैसा रहेंगे। और उनका जीवन का उद्देश्य था नशा करना। मतलब कौन से नशा? शराब का नशा नहीं, ड्रग्स का नशा, मतलब चरस, भांग, भांग नहीं, हुआ भांग नहीं मिलता है, भांग, चरस और गंजा। और एक ये था, निकला था उस समय एक केमिकल था जिसको कहा जाता है एलएसडी। एलएसडी को एलएसडी खाने से साइकेडेलिक ड्रग्स है वो। तो जो भी हो, तो वो लोग हिप्पी लोग उस लोअर ईस्ट साइड में रहते थे। तो प्रभुपाद ऐसे धीरे 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 एकदम लोअर ईस्ट साइड में आ गए। और प्रभुपाद क्या करते थे? प्रभुपाद करताल लेके, वहाँ एक पार्क है जिसका नाम है टॉमकिन स्क्वायर पार्क, वो पार्क में बैठकर प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे। और इसके कारण, इसकी प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से जो यंग अमेरिकन्स बिकेम अट्रैक्टेड टू प्रभुपाद, प्रभुपाद के प्रति आकृष्ट होने लगा। इसके पहले भी और कुछ बात है कि प्रभुपाद एक जगह रहते थे और वहाँ की किस कोई यंग लड़के के साथ उनका परिचय हुआ, जो हिप्पी नहीं थे, वो साधारण बालक थे। और उन्होंने प्रभुपाद के लिए एक छोटा सा दुकान, रास्ता के ऊपर जो दुकान होता है, जहाँ जिस कमरा में दुकान होता है वैसे एक कमरा लिया, जिसको स्टोर फ्रंट कहा जाता है, स्टोर दुकान, दुकान का घर किराए में लिया। और वहाँ पर प्रभुपाद अपना प्रचार कार्य शुरू किया। और उस स्टोर फ्रंट के पीछे एक अपार्टमेंट में, फर्स्ट फ्लोर में एक अपार्टमेंट में प्रभुपाद रहते थे। वो जो यंग युवा, दो चार युवक जो आए थे, मिले थे प्रभुपाद के साथ, उन्होंने ही प्रभुपाद जी के लिए ये आयोजन किए थे। उनमें से एक का नाम था माइकल ग्रांट। माइकल ग्रांट ही प्रभुपाद का, प्रभुपाद को पहले से ही बहुत मदद दिया, जो बाद में प्रभुपाद का शिष्य बना और सन्यासी भी बना। उनका नाम हुआ मुकुंद गोस्वामी। तो मुकुंद महाराज ने प्रभुपाद को बहुत शुरू शुरू में भी बहुत मदद दिए थे। तो उन्हीं के कारण ये स्टोर फ्रंट मिला था और ये कमरा, ये फ्लैट मिला था, अपार्टमेंट मिला था जहाँ प्रभुपाद रहते थे। और उस वहाँ पर श्रील प्रभुपाद शाम को कीर्तन करते थे, शाम को कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। और कीर्तन के बाद प्रभुपाद भगवद गीता के आधार पर क्लास देते थे, और क्लास के बाद प्रसाद देते थे। कैसे प्रसाद देते थे? एक या दो आपल को ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके काट के, वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो आया था उन सबको देते थे। बल्कि भक्त लोग वैसे प्रभुपाद के द्वारा आकृष्ट होकर उनके पास आने लगा। तो वैसे ही ये हरे कृष्ण मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना हुआ था। और उस समय प्रभुपाद ने देखा, जो लोग रेगुलर नियमित रूप में आता था, जो लड़का लड़की आते थे, प्रभुपाद ने धीरे धीरे उनको बुलाने लगा कि रविवार को भी तुम आ जाओ, दोपहर को आ जाओ। रविवार को छुट्टी रहता है सबको, तो दोपहर को आते थे और उस समय प्रभुपाद उनको खुद प्रसाद बना के खिलाते थे। प्रभुपाद सुबह को बाजार जाते थे, बाजार से सब्जी वगैरह सब्जी अनाज खरीद के प्रभुपाद खुद काटते थे, खुद पकाते थे, हाँ, और खुद उन लोगों को सर्व करते थे। सर्व वो लोग करता था, बल्कि वो प्रसाद खाने के बाद उसको उनको तो पता नहीं था, हाँ, जो बर्तन वगैरह जो है इसको धोना है, हाँ, घर को साफ करना है, वो तो खा लिया, बस खा के घर चले गए। और प्रभुपाद जी को अकेला बर्तन साफ करना पड़ता, हाँ, अब देखिए प्रभुपाद कितना कष्ट उठाए थे ये संस्थान को स्थापना करने के लिए। अकेला 70-72 साल के उम्र में प्रभुपाद बाजार से खरीदा सब्जी, सब्जी को काटा, सब्जी को पकाया, क्यों? क्योंकि ताकि ये लोग उनके भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाए। और हुआ भी, प्रभुपाद का आकर्षण इतना गहरा था कि कोई लड़का बोलने शुरू किया कि हम आप ही के यहाँ रहेंगे। प्रभुपाद बोला ठीक है रहो, तो रहने लगा। वो जो स्टोर फ्रंट है, जो दुकान जो था, जो रात को जहाँ पर प्रभुपाद प्रवचन देते थे, क्लास देते थे, वहाँ पर ही वो लोग ने सोने लगा, वहाँ पर ही रहता था। तो कुछ दिन के बाद एक लड़की, अमेरिकन लड़की, प्रभुपाद को बोला मैं घर नहीं जाऊंगी। प्रभुपाद बोला नहीं, लड़की को घर जाना चाहिए, क्योंकि लड़की का अपने पिता माता के साथ रहना चाहिए। वो बोला मेरा पिता माता मेरा पिता माता नहीं है, आप ही मेरा पिता है, तो अगर कहीं रहना है तो मैं आप ही के साथ रहूँगा। तो इतना ये करने लगा और देखा वो घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पिता माता के साथ बच्चे का कोई संपर्क नहीं रहता है। तो वो था पहला लड़की जो वहाँ रहने को प्रभुपाद ने, प्रभुपाद का दो कमरा था, एक कमरा में प्रभुपाद रहते थे और दूसरा कमरा में वो लड़की रहती थी, और एक हॉल था। और धीरे धीरे और दो चार लड़की भी और भी आके बोला ये अगर रह ना सकते हैं, ये रह सकते हैं तो हम भी यहाँ रहेंगे। तो ऐसे, और प्रभुपाद जी ने भी देखा कि अमेरिका में लड़का और लड़की में वैसा कुछ अंतर नहीं, दोनों ने ही बराबर चलते हैं, वहाँ उतना भेदभाव नहीं है। और क्योंकि तो ऐसे ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार शुरू होने लगा। और भी उस समय प्रभुपाद जी ने जो खाना पकाते थे रविवार और बांटते थे सबको, इससे ही इसका नाम पड़ गया लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट। लव फीस्ट मतलब प्रीति भोज, प्रीति और फीस्ट भोज। तो ऐसे ये संडे लव फीस्ट का शुरू हुआ था। और न्यूयॉर्क के बाद सैन फ्रांसिस्को, जहाँ बहुत सारे युवक और युवतियाँ उस समय रहते थे, कि वो जो हिप्पी आंदोलन हो रहा था उस समय अमेरिका में, उस हिप्पी आंदोलन का केंद्र स्थल था सैन फ्रांसिस्को। तो ये माइकल ग्रांट दीक्षा मिलने के बाद, अच्छा वो भी बहुत सुंदर हुआ, माइकल ग्रांट थे और उनका गर्लफ्रेंड थी, दोनों ने ही दीक्षा लिया। तो प्रभुपाद ने बताया, दीक्षा के बाद प्रभुपाद बताया देखो अब तो तुम्हारा दीक्षा हुआ है, तो अब तो तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड में रूप में नहीं रह सकोगे, तो अब तुमको शादी करना होगा। हाँ, क्योंकि वैदिक प्रथा में स्त्री और पुरुष का मिलन विवाह के माध्यम होता है, नहीं तो ये सही नहीं होता है ये संपर्क। तो उसके ऐसे कुछ दिन बाद उनका शादी भी हुआ। तो शादी के बाद माइकल ग्रांट और उनकी पत्नी, जिसका नाम उस समय हुआ था मुकुंद, और उसका गर्लफ्रेंड का नाम था जेनी, तो जेनी का नाम बना जानकी। मुकुंद और जानकी सैन फ्रांसिस्को में गया और वहाँ जाके वह प्रभुपाद के लिए कुछ एक जगह उन्होंने किराए पर लिया, जहाँ प्रभुपाद को उन्होंने बुलाया और प्रभुपाद ने वहाँ जाकर इस्कॉन का सेक दूसरा जो केंद्र वो बनाया सैन फ्रांसिस्को में। ऐसे इस्कॉन संस्थान का प्रचार शुरू होने लगा, प्रसार शुरू होने लगा। ये संडे फीस्ट का उद्देश्य ये बना कि सबको हम बुलाएंगे, बुला के हम भगवान के बारे में उनको समझाएंगे। भगवान के बारे में ये जो ज्ञान, भगवान के बारे में ये जानकारी बहुत जरूरी है, बल्कि उसको कोई शिक्षा कहीं भी नहीं मिल रहा है ना। बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ बहुत सारे विषय में शिक्षा मिल रहा है, बल्कि ये आध्यात्मिक विषय का शिक्षा कहीं भी मिल रहा है? जैसे कहीं भी ये शिक्षा मिल रहा है कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये शिक्षा कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आत्मा जो है इसका विचार कहीं हो रहा है? आत्मा जो है इसका भी विचार नहीं हो रहा है। शरीर और आत्मा के बीच अंतर का क्या, आत्मा का जो अवस्थिति है, आत्मा का जो अस्तित्व है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। बल्कि प्रभुपाद ने सोचा कि इस ज्ञान को प्रचार होना जरूरी है, और जिसको इस विषय में ज्ञान आ जाता है तो वो स्वाभाविक रूप में ही इस विषय के प्रति, इस विषय को ग्रहण कर लेते हैं। और देखिए, एक अमेरिकन और यूरोपियन का, अमेरिका और यूरोप के यूरोप वासियों के एक बहुत बड़े गुण हैं। वो गुण है, वो जब कुछ ग्रहण करते हैं एकदम पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। भारत में ये थोड़ा कम होता है, हम आधा आधा चलता है, मतलब यहाँ को भी संभाल लेंगे, वहाँ को भी संभाल लेंगे। क्योंकि इसका कारण भी ये है कि भारत में हमारा जो पारिवारिक संपर्क जो है ये बहुत गहरा होता है, इसलिए जैसे बच्चा जब बड़ा होता है वो सोचता है कि मेरा कुछ कर्तव्य है, मेरा पिता माता हमको इतना साल देखभाल किया, तो उन्होंने बुढ़ा हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो उनको अब मेरा उनको देखभाल अब हमको करना चाहिए। और ये सोचते हैं कि अगर हम चले जाएंगे तो उनको क्या होगा, ऐसे सोचते हैं। और इसके अलावा भी उनके जो प्यार का जो संपर्क है ये इतना गहरा होता है कि छोड़ के निकलना बहुत मुश्किल होता है, होता है ना, घर छोड़ के निकल जाना। बल्कि अमेरिका में वैसा नहीं, वो लोग 15 साल 16 साल के बाद माँ बाप ही उसको बोलते हैं, ठीक है तुम्हारा उम्र 16 साल हो गया, अब निकल लो, अपना देख लो, अपने जगह ले लो। हो सकता है कि पिता रहता है प्रासाद में, बल्कि लड़का को बोलते हैं वो बहुत सारे कमरा है ये है, बोलता है नहीं तुम नाउ यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, अपने पैर में खड़ा हो जा होने का कोशिश करो। और ये क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो संपर्क इतना गहरा नहीं है, उनमें प्यार का संपर्क उतना गहरा नहीं होता है। तो एक रूप से ये अच्छा है, इसलिए ही उन्होंने घर से निकल जाते हैं, कुछ कम से ज्यादा 18 साल तक उन्होंने घर में रहते हैं बच्चे लोग, 18 साल के बाद घर से निकल जाते हैं। और तब वो खुद ही अपने आप को संभालते हैं। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनको पिताजी ने ये स्पॉन्सर करते हैं, पैसा देते हैं, बल्कि वो लोग वहाँ पर ही घर से निकलकर वहाँ रहते हैं। और बाकी कोई आदमी तो ऐसे जो उस समय जैसा हो रहा था सब घर छोड़कर निकल गए थे। और जब प्रभुपाद जी के साथ उनका संपर्क बना और प्रभुपाद की शिक्षा के द्वारा जब उन्होंने प्रभावित हुआ, तो उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभुपाद के चरण कमलों में समर्पण कर दिए थे। उस समय पता है जब प्रभुपाद सन 1966 में 65 में अमेरिका गए थे, 66 में इस्कॉन का स्थापना किए थे, और प्रभुपाद 77 में मतलब उसके 10-11 साल के बाद प्रभुपाद इस भौतिक जगत छोड़कर चले गए। बल्कि इस 10 साल के अंदर प्रभुपाद सारा दुनिया भर हर शहर में, जितने बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के कोने कोने में, हर जगह प्रभुपाद इस्कॉन का मंदिर का स्थापना किए थे। 108 मंदिर को स्थापना हुआ था, और उस समय प्रभुपाद का 10,000 शिष्य था। और वो कैसा शिष्य, एकदम पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद की सेवा में, प्रभुपाद के कार्य को संपादन करने में अपने आप को उन्होंने उत्सर्ग कर चुके थे। ऐसा भी शिष्य बहुत होता है जो शिष्य दीक्षा लेते हैं बल्कि घर में रहते हैं, बल्कि वो लोग घर में रहने वाले शिष्य नहीं थे, वो घर छोड़कर निकल कर शिक्षक पूर्ण रूप से प्रभुपाद के सेवा में युक्त हो गए थे। तो ऐसे इस्कॉन का शुरू हुआ था, इस्कॉन संस्थान का। और 10 साल के अंदर मैं जैसे बताया 108 मंदिर दुनिया भर स्थापना हो चुका था, 10,000 लगभग 10,000 शिष्य था प्रभुपाद को, शिष्य अनुयायी थे, वो सब प्रभुपाद की सेवा में पूर्ण रूप से लगे थे। ज़्यादा अधिक से अधिक भक्त, लगभग सभी भक्त उस समय कोई भी घर में नहीं रहता, सब मंदिर में रहते थे। ये जो 10,000 भक्त था वो सब मंदिर में रहने वाले भक्त था। और क्यों उन्होंने प्रभुपाद के द्वारा ऐसे प्रभावित हुए थे, क्योंकि प्रभुपाद से उनको ऐसा एक शिक्षा मिला था जो उनके मन को और विचार को बहुत सुंदर रूप से प्रभावित किया था, पूर्ण रूप से प्रभावित किया था। उनको पता चला कि यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये जो विषय जो है, ये विषय उतना कठिन कुछ विषय नहीं है, बहुत ही सरल विषय है। ये विषय क्या है, आत्मा और शरीर, शरीर और आत्मा का अंतर। शरीर का मृत्यु क्यों होता है, ये हमको विचार करना चाहिए। मृत्यु क्यों होता है, हम हर व्यक्ति कभी ना कभी ऐसे सोचते हैं, कि मृत्यु क्या है, है ना, सोचते हैं ना, बल्कि जवाब सही जवाब मिलता है। मुझे बहुत याद है, स्पष्ट रूप से याद है, इस विषय में मैं सोचने लगा जब मेरा उम्र 8 साल का था, जब मेरा माँ का मृत्यु हुआ था, तब मैंने सोचने लगा कि ये क्या है, क्यों वो थी और अब नहीं है, कहाँ गई है। बल्कि उस समय कुछ जवाब नहीं मिला, बहुत जवाब इसके जवाब में बहुत ढूंढा, कहीं भी सही जवाब नहीं मिला। बल्कि जब से प्रभुपाद के साथ मेरा मुलाकात हुआ तब से ये जवाब स्पष्ट रूप से मिल गया था। देखिए प्रभुपाद का जवाब क्या था, प्रभुपाद का जवाब मतलब ये जवाब हमारा वेद का जवाब है, भगवद गीता का जवाब है, श्रीमद् भागवतम का जवाब है। ये प्रश्न का जवाब क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु शरीर से आत्मा को चले जाना, इसे मृत्यु होता है। आत्मा जब तक शरीर में रहता है तो शरीर जिंदा रहता है, जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो ये शरीर जो जड़ है वो जड़ शरीर फिर से जड़ बन जाता है, मतलब इस शरीर में चेतना नहीं रहता है। जीवन का मतलब क्या है, हम सब जिंदा हैं, इसका मतलब क्या है, कभी आप सोचे हैं, जरूर सोचे होंगे, जिंदा का मतलब क्या है, हम जिंदा हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा चेतना है, हम चेतन हैं, चेतना के कारण हम जिंदा हैं। बल्कि जड़ में जड़ क्या चेतन होता है, जड़ वस्तु चेतन होता है, जैसा ये एक जड़ वस्तु है, हाँ इसमें चेतना है, ये भी एक जड़ वस्तु है, इसमें चेतना है, बल्कि ये एक जड़ वस्तु है, ये शरीर, इसमें चेतना है, क्यों है, आत्मा है, क्योंकि शरीर में आत्मा है इसलिए शरीर में चेतना है, अर्थात ये शरीर जिंदा है। और जब आत्मा शरीर से छोड़कर चले जाएंगे तो ये जड़ शरीर फिर से जड़ बन जाएगा, तो मृत्यु किसका होता है, शरीर का होता है। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं। तो देखिए ये जो जवाब, ये समझना क्या कोई कठिन है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कितना जरूरी प्रश्न है, कितना गंभीर प्रश्न है, कितना गहरा प्रश्न है, बल्कि इसका उत्तर बहुत ही सरल है। बल्कि इसके लिए हमको एक विषय स्वीकार करना पड़ेगा, वो विषय क्या है, आत्मा। तो ये आत्मा के बारे में जो ज्ञान, उसे ही आत्मज्ञान कहा जाता है या आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने आकर हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए थे और इसके कारण आज से लगभग 40 साल पहले अमेरिका के युवक और युवतियां प्रभुपाद के द्वारा इतना प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जो विषय में उनको कुछ भी जानकारी नहीं था, बल्कि जो विषय हमारे लिए सबसे ज़रूरी विषय हैं, उस विषय में ज्ञान जब उन्होंने प्राप्त हुए थे उनसे, तब उन्होंने सोचा इस विषय के अध्ययन करने के लिए ही जीवन को अर्पण करना चाहिए, ये ही जीवन का असल उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने, उन्होंने अपने आप को प्रभुपाद के पास पूर्ण रूप में समर्पण कर दिए थे। और प्रभुपाद उनको क्या शिक्षा दिया, मैं जो जो तुमको सिखाया हूं जाओ अब तुम जाके उसको प्रचार करो, दूसरे को सिखाओ। ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ, जब कोई भला वस्तु भला चीज हमको मिलता है तो वो क्या हमको बस अपने पास ही रख लेना चाहिए, ना क्या उसको बांटना चाहिए। बांटना चाहिए। जो दो प्रकार के मनुष्य होता है, एक है महाजन और एक है कृपण। संस्कृत में ये दो शब्द आता है, कृपण शब्द हिंदी में भी आता है ना, कंजूस। कंजूस का शुद्ध शब्द शायद कृपण है, ये शब्द आता है कृपण। और महाजन भी आता है, महाजन तो बहुत होते हैं ऐसे, मध्य प्रदेश में बहुत महाजन हैं। तो महाजन, महाजन कौन है, जो उदार होता है, और कंजूस कौन होता है, कृपण कौन होता है, जिसका मनोभाव बहुत संकीर्ण होता है। जो व्यक्ति अपने जो चाहता है कि सब कुछ हम मेरे लिए रख दूंगा, वो कैसे आदमी है, वो कंजूस है ना। तो दुनिया में सबसे बड़ा संपदा जो है, सबसे कीमती जो संपदा है, सबसे कीमती संपदा क्या है, इस आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम क्या कंजूस की तरह अपने पास ही रख लेंगे, या महाजन बन के सबको पास उसको बांटेंगे। आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं, आप सब महाजन हैं, है ना। तो इसको बांटना बहुत ही जरूरत है, पहले खुद ग्रहण करना होगा और उसके पश्चात उसको वितरण करना होगा। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कैसे दूंगा, मैं तो कुछ जानता नहीं। प्रभुपाद बोलते थे तुम जितने भी जानते हो उतना ही तुम प्रचार करो। इस सिलसिले में एक दृष्टांत है बहुत सुंदर। प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे एक अमेरिकन भक्त जिसका नाम था श्याम सुंदर प्रभु, और श्याम सुंदर प्रभु का एक बच्ची थी, शायद उस समय उसका उम्र था 4-5 साल का होगा। और श्याम सुंदर प्रभुपाद के साथ सफर करते थे, उनके पत्नी और उनके बच्चा के साथ। और तो एक समय प्रभुपाद जब भारत में आया तो श्याम सुंदर था वहाँ, शायद ये दिल्ली का या बम्बई का ये होगा, कोई बहुत बड़े आदमी प्रभुपाद को मिलने आए थे। तो जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभुपाद के साथ मिलने के लिए, तो सरस्वती ने उनके साथ बात कर रहा था बच्ची, ऐसे होता है ना बच्चे को देखकर मजाक के में कुछ बातें करते हैं, तो सरस्वती के साथ उनका बात हो रहा था। तो सरस्वती ने उनको पूछा डू यू नो कृष्णा, आप जानते हैं कृष्णा कौन है। और ऐसे मजाक करते हुए उन्होंने बोला नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ कृष्णा कौन है। तो सरस्वती बताया तुम नहीं जानते हो, कृष्णा भगवान है, कृष्णा इज गॉड। तो वो बोल स्वीकार कर लिए। ओ जब प्रभुपाद को बताया गया कि सरस्वती ने ऐसे बोल रही थी, तो प्रभुपाद बोला देखो ये है प्रचार, डू यू नो कृष्णा, कृष्णा इज गॉड। अगर तुम इतना तक जानते हो तो वही जाके प्रचार करो। तुम जानते हो कृष्णा कौन है, नहीं कृष्णा भगवान है, ये स्वीकार कर लो, या कृष्णा को जानने का कोशिश करो। ये तक तो हम बोल सकते हैं ना, ये बोलने के लिए तो हमको PhD और DPhil का जरूरत है नहीं होता है। हम तो बड़े पढ़े लिखे बनना नहीं चाहिए, 5 साल के लड़की भी ये बता सकती है। तो इसका मतलब है ये जो भक्ति मार्ग जो है, इस मार्ग को कोई भी ग्रहण कर सकता है और कोई भी प्रचार कर सकता है। एक बच्चा एक इतने बड़े मिनिस्टर के पास भी प्रचार कर सकते हैं, तो प्रचार करना चाहिए। इसलिए जो प्रचार करते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैं बोला था महाजन, कृपण महाजन, और ये महाजन से आया है महात्मा। महात्मा कौन है? महात्मा कौन है? जो बड़े पॉलिटिशियन होते वो लोग महात्मा हैं? जो बड़े विद्वान है वो महात्मा है? महात्मा का वर्णन कैसे हुआ है भगवद गीता में? महात्मानस तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिम आश्रितः। महात्मा वो है जो भगवान का दैवी प्रकृति के आश्रय लिए है, मतलब जो भगवान के शरण लिए हैं, शरण में आ गए हैं, वो है महात्मा। और वैसे व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान का कृपा हर के पास बांटते हैं, हर को भगवान को देते हैं। और अब बताइए, भगवान से बढ़कर और कोई संपदा हो सकता है? और कोई ऐश्वर्य है भगवान से बढ़कर? नहीं। तो ये वस्तु को दान करना सबसे जरूरी है। प्रभुपाद ये शिक्षा दिए थे, मैं तुमको जो दे रहा हूं तुम जाओ उसको जाकर बांटो। इस निर्देश लेकर हम यहां आए हैं, और थोड़ा कुछ जो जानकारी हमको हुआ है इस विषय में वो थोड़ा कुछ बांटने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमसे आपको कुछ मिला है तो आप भी उसको बांटिए। इसको केवल ग्रहण करने से ही काम पूरा नहीं होगा, ग्रहण करने के पश्चात उसको वितरण करना चाहिए, दान करना चाहिए, दूसरे को देना चाहिए। तो ये भावना लेकर श्रील प्रभुपाद ये संडे फीस्ट का आयोजन किए थे, संडे लव फीस्ट। लव का मतलब है प्यार, प्रेम। कौन सी प्रेम? भगवत प्रेम, भगवान का जो प्यार है वो सबको बांटना। तो आप आज से हर रविवार ये 5:30 बजे से संडे फीस्ट होगा, आप सब आना और दूसरे को भी लाना। और जो आपको मिल रहा है यहाँ से हरे कृष्णा आंदोलन से, इस्कॉन से, उसको दूसरे को पास बांटने का कोशिश करना। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद।